नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राशिद खान का हिंदुस्तानी संगीत में क्या स्थान और रुतबा है, इसकी ठीक ठीक व्याख्या मैं नहीं कर सकता, लेकिन उनके जाने से लाखों सुनने वालों में जो खालीपन आया है उसे महसूस कर रहा हूँ। वे कई दिनों से अस्पताल में थे, लेकिन उनके जाने के बाद ही सबका ध्यान आता है। वजह यह है कि हिंदी पत्रकारिता में ऐसे फनकारों के लिए जगह बहुत कम होती है। उनका इस्तेमाल बहुत होता है, उनके गानों का, फन का, संगीत का बहुत इस्तेमाल होता है, मगर इतने बड़े फनकार का जाना कई बार हिंदी पत्रकारिता के लिए छोटी खबर बन जाती है। यह शिकायत नई नहीं है, बस दोहरा रहा हूं कि हिंदी पत्रकारिता को किसी बात से फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इस पर बात होनी चाहिए कि मीडिया और राजनीति का संसार इस तरह की दुखद खबरों से भी कैसे इतना अछूता रह जाता है। राशिद खान केवल ख्याल और ठुमरी तक सिमटे हुए उस्ताद नहीं थे, बल्कि उनके फिल्मी गीत, रविंद्र संगीत भी खूब लोकप्रिय हुए। कई लोगों के मोबाइल फोन में कॉलर ट्यून की तरह साथ साथ रहते हैं। राशिद खान के गानों पर रील बनाने वाला समाज भी व्याकुल नहीं होता है जब उनकी गंभीर बीमारी और स्ट्रोक की खबर आती है। सुनने वाले रसिया जानते हैं कि ऐसे कलाकार असंख्य दिनों की निरंतर साधना से बनते हैं, मगर मीडिया के जिस प्लेटफॉर्म पर आप अपना देश देखते हैं, उन प्लेटफॉर्म पर ऐसे लोग बहुत कम दिखाई देते हैं, जबकि ये लोग भी हर दिन अपने काम से देश बनाते हैं, बनाते ही नहीं उसकी धरोहरों को बचाकर रखते हैं। हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसिकी या हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की दीर्घकाल से चलती आ रही परंपरा के सर्वोच्च गायकों में माने जाने वाले उस्ताद राशिद खान पिछले 3.5 दशकों से रामपुर सहसवान घराने का परचम बुलंद करते रहे। 55 साल के राशिद खान सेरिब्रल स्ट्रोक और प्रोस्टेट कैंसर के चलते कुछ हफ्तों से कोलकाता के एक अस्पताल में वेंटिलेटर के सहारे सांसें ले रहे थे। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण जैसे उच्च राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजे जा चुके राशिद खान रामपुर सहसवान घराने के संस्थापक उस्ताद इनायत हुसैन खां की 5वीं पीढ़ी के वंशज रहे हैं। इनके उस्ताद और नाना खां साहब निसार हुसैन खां भी पिछली शताब्दी के अग्रणी गायकों में से एक थे। जब उम्र बढ़ी तो संगीतज्ञ पंडित विजय किचलू के आग्रह पर 1977 में निसार हुसैन खां कोलकाता की ITC संगीत रिसर्च अकादमी में बतौर गुरु शामिल हो गए। अपने साथ खां साहब अपने शागिर्दों को भी कोलकाता ले गए, जिनमें उनके 10 वर्षीय नाती राशिद भी थे। 1993 में अपनी मृत्यु तक निसार हुसैन शागिर्दों को बाकायदा तालीम देते रहे। राशिद इन सब में सबसे प्रतिभाशाली शागिर्द के रूप में उभरे और 1980 के दशक के आखिरी सालों से ही हिंदुस्तानी संगीत की दुनिया पर छा गए। उस वक्त आफताबे सितार, उस्ताद विलायत खां साहब जैसे बड़े कलाकार स्नेह और गर्व से कहते थे, राशिद तो आजकल हमारा खिलौना बना हुआ है, जो भी हम कहते हैं सुना देता है। हिंदुस्तानी संगीत के एक और प्रगाढ़ पंडित पंडित भीमसेन जोशी ने 30-35 वर्ष पहले कुछ देख सुनकर ही कहा था कि राशिद खां के रहते हमारे देश के संगीत का मुस्तकबिल बेहद रोशन है। राशिद खान ने उस्ताद और नाना खान साहब निसार हुसैन खान से मिली तालीम में अथक रियाज और नवीन प्रयोगों से नई बातें पैदा की। उम्र के साथ जैसे जैसे रागों की समझ और परिपक्व हुई, राशिद खान के गाने में असर और गंभीर बढ़ता चला गया। अपनी स्वाभाविक प्रबल और पुरअसर आवाज में नाना उस्ताद की झिड़क और खुद की मेहनत से लोच और फिरत पैदा की। झिड़क और फिरत, ये न समझिएगा मैं शास्त्रीय संगीत की इन बारीकियों को समझता हूँ, इसके एक रसिक कनव ने ऐसा ही लिखा है, पढ़ रहा हूँ। बगैर इन बातों के आप किसी महान गायक की विदाई का शोक गीत नहीं लिख सकते। कनव लिखते हैं कि राशिद खान ने बहलावों के प्रयोग से कठिन रागों को भी भावना और रस से भर दिया। सपाट तानों के पेच खम दिखाने के साथ साथ सौंदर्य बोध की अपनी गहरी समझ से छोटी छोटी सरगम और छूट की तानों से भी अपने गायन को विभूषित किया। जाने माने सरोद वादक अर्णव चक्रवर्ती बताते हैं कि इंदौर के महान गायक उस्ताद अमीर खान से प्रभावित होकर राशिद खान ने अपने गायन में मेरुखंड तकनीक के प्रयोग से सरगम की तानों को भी समाविष्ट किया। इन सब प्रयोगों के चलते उनका बंदिशों को कहने का तरीका हमेशा भावपूर्ण रहा, चाहे वह कोई प्रचलित राग गा रहे हों या अप्रचलित राग।
राशिद खान साहब 20वीं सदी के अंत में उभरे बहुत कम घरानेदार गायकों में से एक थे जिन्हें बहुत ऊंचे स्तर की गहरी तालीम मिली थी। शुरुआत के दिनों से ही गायकी की टेक्निक पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत तो थी, और वो घरानेदार गायक तो थे ही, साथ ही वो ITC संगीत रिसर्च एकेडमी, जो कि एक कंजर्वेटोर स्टाइल का एक्सपेरिमेंटल इंस्टीट्यूशन था, उसके भी वो प्रोडक्ट थे। इस संस्थान में हिंदुस्तानी संगीत परंपरा की अलग अलग धाराओं से उनका परिचय हुआ, और इनमें बहुतों को वे अपने पहले से ही मजबूत गायकी में शामिल करने में सफल रहे। एक और बात जो उन्हें रेलेवेंट बनाती है वो ये है कि उन्होंने जो महसूस किया, जैसा महसूस किया, सब उसी क्षण गाया, जैसे कि हिंदुस्तानी संगीत के उच्चतम लेवल पर होना चाहिए। हो सकता है कि अपनी पीढ़ी के एकमात्र गायक थे जो फॉर्मेट और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के प्रति चल रहे आज के जो ऑब्सेशन से आजाद रहे, जैसा कि आज अधिकतर ख्याल गायकों में देखा जाता है। ये गायकी का अंदाज जोखिम भरा जरूर है, लेकिन जब वो सफल होता है तो संगीत का एक जादू पैदा होता है जो कम ही देखने को मिलता है। यही बात राशिद खान ने बार बार सिद्ध करके दिखाई।
आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। आप गुनगुनाना चाहते हैं, राशिद खान को देखते ही यह गीत आपकी जबान पर आ जाता है। उनके निधन की खबर पर कई लोगों ने फेसबुक पर यह गाना पोस्ट किया है। वैसे तो उनके कई गीत अमर हैं, मगर चलिए एक के बहाने ही सही, आप उन्हें भूल तो नहीं सके। माई नेम इज खान और किसना के गानों के सहारे भी याद आते रहेंगे। राशिद खान अपने छोटे से जीवन में काबिल शागिर्दों को तैयार कर गए। कृष्णा बोंगने और नागेश अड़गांवकर जैसे आला शागिर्द उनकी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। राशिद खान के पुत्र अरमान खान को भी पिता के नक्शे कदमों पर चलते हुए संगीत जगत में अपना स्थान मिलने लगा है। प्रोफेसर आलोक राय कहते थे, राशिद खान का पहला सुर लगाना ही उनके विशुद्ध सांगीतिक अधिकार का परिचय दे देता था। पहले ही सुर में रंग जमा देते थे। शोरगुल से भरे इस वक्त में क्या एक ही सुर में हजारों लोगों को बांध लेना सबके बस की बात है? क्या यह किसी जादू से कम है?
अपनी पीढ़ी में राशिद खान एकमात्र संगीतकार थे जो रामपुर सहसवान घराने की पब्लिकली ज्ञात जो संपूर्ण गायकी है उसको पूरी तरह से गाने में सक्षम थे, और बहुत कुछ उससे बढ़कर भी। उनसे पहले भी हालांकि उनके घराने में कई प्रतिभाशाली कलाकार हुए, लेकिन उनमें से किसी में भी वो कठोर रियाज करने के लिए जो सपोर्ट और वक्त जो चाहिए वो उनको नहीं मिला, जिससे उस्ताद निसार हुसैन खान साहब के संगीत को अपनाने में, उसको आत्मसात करने में और पूरी तरह से समझने के लिए जो जरूरी था। फिर उसके ऊपर राशिद खान की अपनी जो रिफाइनमेंट और उनके गाने की जो अपनी समझ थी उसको जोड़ें तो आप को ऐसा कलाकार मिलता है जो सही मायने में उस्ताद कहलाने का हकदार है। साथ ही साथ उनमें एक आधुनिक, जैसा हम कहेंगे CD युग के संगीतकार की भी कुछ खूबियां, कुछ लक्षण थे, जैसे बहुत परफेक्ट सुर लगाना, शानदार रेंज, 3 सप्तक में आराम से घूमते थे वो, और फिरत का बहुत सहज अंदाज, ये सब मिलजुल कर ही उस्ताद राशिद खान साहब बने थे।
हमें याद रखना चाहिए, राशिद खान का उदय उस कालखंड में हुआ जब पिछली पीढ़ी के बहुत से महान संगीतकारों के पेशेवर जीवन की शाम ढल रही थी। सांगीतिक दुनिया में ऐसा माहौल था जैसे सब कुछ खत्म सा होने को है। इस रंगारंग दुनिया का एक अनकहा नियम है कि यह नए से दूरी बनाए रखती है, नएपन को आत्मसात करने में अपना समय लेती है, हर नए में किसी पुराने का अक्स तलाश करती रहती है। जब पुराना बिछड़ने लगता है, इस दुनिया में एक असहजता स्वतः ही पसर जाती है। ऐसे ही समय में एक शास्त्रीय प्राचीनता की छाया लेकर राशिद खां का आगमन होता है और वह अहले मौसिकी के पुरातन के बिछड़ने की चोट को सहनीय बना देते हैं, सुनने वालों को तमाम दुखों से उबार लेते हैं। मगर जब वही राशिद खां इस दुनिया को छोड़कर फिर से वीरानी पैदा कर जाते हैं तो इस दुख के साथ किसका इंतजार किया जाए? उनके जाने के बाद अब कौन आएगा? अलविदा राशिद साहब।